समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नया दिन है, नई कहानी बन जाने दे, यादों की हंसी निशानी बन जाने दे, दिन बीत जाएगा कहानी बनकर, याद रह जाएगी निशानी बनकर। सुप्रभात, आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल भी होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के संक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं नीना आर्लेकर। नमस्कार नीना।
हेलो अलका। यू राइटली सेड दैट वी आर बिगिनिंग न्यू स्टोरीज, न्यू डे एंड न्यू बिगिनिंग्स। And a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 3rd of March 2025. So let's begin with the headlines. Alka?
आज विश्व वन्य जीव दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जूनागढ़ जिले के सासन गीर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बोर्ड में 47 सदस्य हैं, जिसमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य वन्य जीव संरक्षक और विभिन्न राज्यों के सचिव शामिल हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। ये बोर्ड वन्य जीव तथा वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। बैठक के बाद श्री मोदी सासन में महिला वन कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे। आज सुबह प्रधानमंत्री गीर नेशनल पार्क में जंगल सफारी पर जाएंगे। कल श्री मोदी ने जामनगर में वनतारा पशु बचाव केंद्र का दौरा किया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी दौरा किया और सोमनाथ महादेव की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने कल देर शाम सोमनाथ ट्रस्ट बैठक की भी अध्यक्षता की। श्री मोदी शनिवार से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं।
यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह विल इनॉग्रेट द वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन डेयरी सेक्टर इन न्यू दिल्ली टुडे। द वर्कशॉप विल फोकस ऑन पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग वाइल इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द वर्कशॉप विल विटनेस साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर the establishment of biogas plants across multiple states. It will have technical sessions on sustainable manure management models which convert dairy waste into biogas, compressed biogas and organic fertilizers.
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 6 मार्च तक स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री सिंधिया MWC में भारत पवेलियन का उद्घाटन भी करेंगे। ये विश्व के सबसे बड़े और प्रभावशाली प्रौद्योगिकी और दूरसंचार कार्यक्रमों में से एक है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक ऐसा मंच है जो भारत के नवाचार पारिस्थितिकी सिस्टम को दर्शाता है। इस मंच के माध्यम से अग्रणी दूरसंचार कंपनियां और इनोवेटर्स अपनी अत्याधुनिक प्रगति और स्थायी समाधानों का प्रदर्शन करते हैं। भारत पवेलियन में 38 भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माता अपने अत्याधुनिक उत्पादों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का प्रदर्शन करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान श्री सिंधिया 5G, AI, 6G, क्वांटम और अगली पीढ़ी की मोबाइल प्रौद्योगिकियों में अत्याधुनिक विकास का पता लगाने के लिए वैश्विक उद्योग प्रमुखों, नीति निर्माताओं और नव प्रवर्तकों के साथ बातचीत करेंगे।
With India and the US gearing up to start negotiations for a proposed bilateral trade agreement, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal's Washington visit will begin today. Mr. Goyal is likely to hold talks with US Trade Representative Jamieson Greer and US Commerce Secretary Howard Lutnick.
British Prime Minister Keir Starmer ne Ukraine par सफल शांति समझौते के लिए 4 सूत्री योजना तैयार की है। इसमें कहा गया है कि अन्य यूरोपीय सहयोगियों के साथ ब्रिटेन यूक्रेन की मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का समर्थन करने के लिए किसी भी नए समझौते में सैन्य मदद शामिल होनी चाहिए और प्रत्येक समर्थक राष्ट्र को जिम्मेदारी लेते हुए अपना हिस्सा बढ़ाकर सर्वोत्तम संभव तरीके से योगदान देना चाहिए। कल लंदन शिखर सम्मेलन में स्टार्मर ने कहा कि यूरोपीय देश चार प्रमुख उपायों पर सहमत हुए हैं। लंदन शिखर सम्मेलन में तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो महासचिव और यूरोपीय आयोग तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्षों ने भाग लिया।
मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय 44 रन्स इन द फाइनल लीग मैच ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन दुबई लास्ट नाइट, सेटिंग अप अ सेमीफाइनल क्लैश विद ऑस्ट्रेलिया। नाउ वी गो टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर अ डिटेल्ड रिपोर्ट।
नीना, आफ्टर बीइंग इनवाइटेड टू बैट फर्स्ट, इंडिया पोस्टेड 249 फॉर 9 विद श्रेयस अय्यर स्कोरिंग 79 एंड हार्दिक पांड्या एडिंग अ लेट 45 रन्स। इन रिस्पांस द कीवीज वर बोल्ड आउट फॉर 205 इन 45.3 ओवर्स विद केन विलियमसन टॉप स्कोरिंग विद 81 रन्स। फॉर इंडिया, चक्रवर्ती इम्प्रेस विद हिज फर्स्ट ओडीआई 5 विकेट हॉल, अर्निंग हिम द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। स्पीकिंग आफ्टर द मैच, चक्रवर्ती रिवील्ड दैट ही हैड लर्न ऑफ हिज सेलेक्शन अ डे अर्लियर, गिविंग हिम वैल्युएबल टाइम टू प्रिपेयर। हाउएवर, ही एक्नॉलेज्ड द चैलेंजेस ऑफ एन ऑल स्पिन स्ट्रेटजी विच required precise execution.
Being an all-spin attack is also, in certain ways, gives a lot of pressure because there are no much fast bowling options. So you need to hit the money.
With this win, India topped Group A, winning all three of their group stage matches. They will face Australia in the first semi-final in Dubai tomorrow. Meanwhile, New Zealand will take on Group B leader South Africa in second semi-final in Lahore on Wednesday. In football, the Indian Super League clash between East Bengal and Bengaluru FC ended in a 1-1 draw at the Vivekananda Yuva Bharati Rangan Stadium in Kolkata last night. The result ended playoff hopes for both teams. East Bengal are placed 8th, having 28 points from 23 games now, and could get to a maximum of 31 with one game remaining, which would still fall short of the currently 6th place North East United FC with 32 points. And in chess, Grandmaster R. Pragyananda and Arvid Chidambaram continue to share the lead in the 2025 Prague Masters after their draw in round 5. Today is a rest day and round 6 will be played tomorrow at 7:30 PM IST with 4 rounds remaining. Nina.
Thank you, Manik.
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का। पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं नीना।
अलका, वी स्टार्ट विद चेन्नई फर्स्ट। द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज सैंक्शनड 70 करोड़ रुपीज टू रिट्रोफिट 1,000 गवर्नमेंट डीजल बसेस, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 200 मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन बसेस इन चेन्नई विद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किट्स। द इनिशिएटिव फॉलोज द यूनियन गवर्नमेंट्स टाइटनिंग ऑफ नॉर्म्स ऑन एजिंग डीजल बसेस। द सीएनजी कन्वर्जन इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग सीएनजी सिलेंडर्स, अ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एंड एन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट टू मैनेज गैस फ्लो एज वेल एज मॉडिफाइंग द इंजन टू रन एक्सक्लूसिव ऑन सीएनजी। द ट्रांजिशन इज expected to significantly reduce emissions. Some more news from Chennai. The Tamil Nadu government has identified sites in Kudalur and Tuticorin to serve as shipbuilding hubs. L&T has already established a shipyard at Kattupalli, Ennore, while Hyundai Group Shipbuilding and Offshore Engineering is scouting for land to set up a facility. The old part at Kodalur is being revived to established dry docks and marine equipment manufacturing. Tamil Nadu's proximity to major maritime trade routes enhances its strategic appeal to the industry. Additionally, the state is emerging as a hub for green hydrogen, green ammonia and green methanol production, with plans to become a bunkering port. Moving on to Bengaluru, the budget session of the Karnataka legislature will begin today with Governor Thavarchand set to address a joint session. Chief Minister Siddaramaiah, who also holds the finance portfolio, will present the state budget on March 7. This will be the 16th time Siddaramaiah presents the budget in his political career, setting a record. The government is likely to introduce a bill to regulate microfinance situations, institutions and prevent coercive tactics against debtors. Another bill to split the Bengaluru Mahanagar Palike is also expected to be tabled. Additionally, the Congress may raise the issue of central tax devolution to Karnataka to target the central government. The opposition BJP and JDS have planned to challenge the government on various issues during the session, which will continue until March 21. BJP legislators intend to hold a procession from the legislators' house to Vidhan Sauda, the state secretariat, protesting what they claim are attempts by the government to curtail the governor's powers. Moving on to Hyderabad now. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has said the exact location of the 8 persons trapped inside the partially collapsed tunnel of the Srisailam Left Bank Canal Tunnel project is not known and that the government is trying to speed up the rescue operation. He said the government has suggested to officials leading the rescue operation to use robots inside the tunnel if necessary to avoid danger to rescue personnel. Speaking to the media after visiting the accident site in Nagarkonnur district last evening, the chief minister said the rescue operation will gain speed after the damaged conveyor belt is repaired and is expected to be restored later today. Chief Minister Reddy also said the rescue teams are not able to come to a full understanding where the humans got stuck and they have only a preliminary estimation. 8 persons, including 2 engineers, have been trapped under the collapsed roof of the SLBC tunnel since 22nd of last month and rescue operations are in full swing to bring them to safety. Now it's over to you, Alka.
बिल्कुल, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 28 फरवरी को विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा फिर से शुरू करेंगी। ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर परफॉर्मेंस ऑडिट है, जो 2016-17 से 2021-22 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कोविड के दौरान निधियों का कम उपयोग, परियोजनाओं में देरी और अस्पतालों में दवाओं और स्टाफ की कमी की बात सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछली सरकार ने कोविड के दौरान केंद्र से प्राप्त 788 करोड़ रुपए में से केवल 543 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया। इसके अलावा दिल्ली में पानी की कमी, जल भराव, सीवर जाम और नालों की सफाई पर एक संक्षिप्त चर्चा भी सदन में की जाएगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 मार्च से महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए देने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सत्ता में आने पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए ये योजना लागू करने का वादा किया था। पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 1 महीने के भीतर पात्र महिलाओं की पहचान कर ली जाएगी और फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कल बिजली विभाग और बिजली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ग्रीष्मकालीन कार्य योजना 2025 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में बिजली विभाग और सभी हितधारकों को गर्मी के मौसम के आते ही निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के सर्वोदय विद्यालयों में इस शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर्वोदय विद्यालय में इन कक्षाओं के दाखिले की प्रक्रिया 15 मार्च तक चलेगी। बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावकों के पास निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। नीना, ये नर्सरी, केजी और पहली कक्षा की बात है। आजकल एडमिशन्स भी इतने टफ हो गए हैं कि वो एक युद्ध से कम नहीं है कि बच्चे को कहाँ डाला जाए, किस स्कूल में डाला जाए, उसकी कितनी तैयारी की जाए। वो बेचारा छोटा सा बच्चा भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर स्कूल का चुनाव सही होता है और सारी चीजें ठीक होती हैं तो उसका भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित होता है और संरक्षित होता है।
यस अलका, आई अग्री विद दैट पॉइंट बिकॉज नाउ पेरेंट्स हैव लॉट ऑफ चॉइसेस फॉर स्कूल्स आल्सो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली में अब भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आदेश दिल्ली के अपर मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने जारी किया है। इस आदेश में उन्होंने कहा कि भवन निर्माण गतिविधियों को दिल्ली नगर निगम और अन्य स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में विनियमित करते हैं। दरअसल ये गलत धारणा प्रचलित है कि किसी व्यक्ति को भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। इस आदेश में अपर मुख्य सचिव ने पुलिस और संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कानून के प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने और इस गलत धारणा को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। बात कर लें मुंबई की तो मुंबई के प्रतिष्ठित पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी और प्रभा देवी में रविन्द्र नाट्य मंदिर का कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्नत तकनीक के साथ व्यापक नवीकरण के बाद उद्घाटन किया। नवीनीकरण के बाद पहली बार एक दिवसीय पीएल कला महोत्सव आज होगा। इस महोत्सव के हिस्से के रूप में एक बांग्ला भाषा का नाटक आमार देखा किछू नामुना का मंचन किया जाएगा और 4 मार्च को महिला कला महोत्सव महिलाओं की कलात्मक प्रतिभा का उत्सव रविन्द्र नाट्य मंदिर में होगा, जिसमें लावणी और शास्त्रीय युगल गायन का भव्य प्रदर्शन होगा। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने अखिल भारतीय नाट्य परिषद से लोक कलाओं और रंगमंच पर व्यापक अध्ययन और शोध के लिए पहल करने का आग्रह किया। भायखला के लोकशाहीर अन्ना भाव साठे सभागार में नाट्य परिषद द्वारा अपने 100वें नाट्य सम्मेलन के आयोजित विशेष नाट्य महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री शेलार ने कहा कि शताब्दी नाट्य सम्मेलन के विभिन्न भाषाओं में नाटकों का महोत्सव आयोजित करने की नाट्य परिषद की पहल अत्यंत सराहनीय है। बात कर लें कोलकाता की तो पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा आज से शुरू होगी। पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन परीक्षा आयोजित करता है। इस साल 5,09,000 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे और नीना लड़कियों की संख्या लड़कों से 47,671 अधिक है।
वेरी इम्प्रेसिव।
बिल्कुल, और जब रिजल्ट भी आएगा तो लड़कियां बाजी मार ले जाएंगी।
श्योर।
ये परीक्षा पश्चिम बंगाल के 23 जिलों के 2,089 केंद्रों पर होगी। आज सवेरे आप सुन रहे हैं अलका और नीना के साथ और अब समय है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात करें दिल्ली मुंबई और कोलकाता की। दिल्ली की बात करें तो नीना, दिल्ली का मौसम जो है वो ठंड जो है वो लौट आई है और कह रही है कि आप लोग अच्छे से रहें और ये नहीं कि जब गर्मी हो जाए तो स्वेटर्स निकाल दें, क्योंकि ये जो मौसम है ये बड़ी धोखेबाजी करता है और फिर आपकी तबीयत खराब कर देता है।
Prevention is always better than cure.
बिल्कुल, संभल कर रहने की जरूरत है, बच कर रहने की जरूरत है। और दिल्ली की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बाकी के हाल आप बताएं।
Yes, Alka, here's a weather report from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 17 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius.
बिल्कुल, और अब समय है इतिहास के पन्नों पर नजर डालने का, उन्हें पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 3 मार्च है और नीना, आज विश्व वन्य जीव दिवस भी है और ये दिन वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की वजह वर्ष 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होना थी।
एंड यस अलका, वी हैव नोन फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट animals were way before than us over here. The earth belongs to them.
Bilkul.
And from the majestic lions of Gir and Savannah to the tiniest insect that pollinate our crops, every creature plays a vital role in the delicate maintaining the balance of ecosystem.
बिल्कुल, और वर्ष 2025 में विश्व वन्यजीव दिवस वन्यजीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रहों में निवेश की महत्वपूर्ण थीम के अंतर्गत मनाया जाएगा और विश्व वन्यजीव दिवस 2025 वन्यजीव संरक्षण के लिए नवीन वित्तीय समाधानों के आदान प्रदान और अन्वेषण के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। ये वित्तीय नवाचारों, नागरिक समाज, सरकारों, संगठनों और निजी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों और जैव विविधता के लिए स्थायी वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहयोगी दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करेगा। और अब तारीखों की बात कर लें।
यस, In 78 CE, the Shalivahana Shaka era also known as Saka era, began on this day. It is a historical calendar era that is used in India and other countries. In 1671, the Paris Opera first opened with a performance of Pomone by composer Robert Cambert. In 1923, the first issue of the American weekly news magazine Time was published. In 1924, the last remains of the Ottoman Empire in Turkey got abolished, leading to the reformation of the country under Mustafa Kemal Atatürk. In 1931, the Star Spangled Banner was officially adopted as the national anthem of the United States by an act of Congress.
बिल्कुल, और 1949 की बात कर लें तो बंबई में गांधी जी ने भारत में निरंकुश शासन के विरोध में उपवास शुरू किया था.
In 1931, only Mahatma Gandhi and Viceroy Irwin signed Delhi Pact giving Indians right to make salt if in civil disobedience stops. In 1938, the world's fastest steam locomotive was built that could reach the speed of over 100 miles per hour. In 1967, India signed the International Space Treaty in Moscow.
बिल्कुल, और 2009 की बात कर लें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्मार्ट यूनिट योजना को आज ही के दिन लॉन्च किया था. और अब बात कर लें व्यक्तित्वों की, तो सबसे पहले जिनकी हम बात करेंगे, आज हम याद कर रहे हैं रघुपति सहाय, जिन्हें शायरी की दुनिया में फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है. फिराक उनका तखल्लुस था, उन्हें उर्दू कविता को बोलियों से जोड़कर उसमें नई लोच और रंगत पैदा करने का श्रेय दिया जाता है. फिराक गोरखपुरी ने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ गजल से किया था और फारसी, उर्दू, ब्रज भाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ होने के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच बस गई थी. उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और वर्ष 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी का सदस्य भी मनोनीत किया गया. और इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी नियुक्त हुए थे. फिराक का व्यक्तित्व बहुत जटिल था. फिराक साहब की कविता में सौंदर्य के बड़े कोमल और अछूते अनुभव व्यक्त किए हैं. जैसे एक शेर है कि किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर, फिर भी ये हुस्नो इश्क धोखा है सब मगर फिर भी. और 1962 की चीन की लड़ाई के समय फिराक साहब ने ये उनकी एक गजल जो थी वो बहुत मशहूर हुई थी कि सुखन की शम्मा जलाओ बहुत उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बहुत उदास है रात, कोई कहे ये ख्यालों और ख्वाबों से दिलों से दूर ना जाओ बहुत उदास है रात, पड़े हो धुंधली फिजाओं में मुंह लपेटे हुए सितारों सामने आओ बहुत उदास है रात. शायद अपने जीवन के आखिरी दिनों में फिराक ने लिखा कि अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमाओं को नींद आती है. और अपने बारे में अपने खास अंदाज को उन्होंने लिखा है कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी, हम उसनों जब ये ख्याल आएगा उनको तुमने फिराक को देखा है.
वाओ, they rightly say that poetry is the language of heart.
बिल्कुल, आपको एकदम अलग दुनिया में ले जाता है जो सुकून की दुनिया है और शांति की दुनिया है.
Absolutely. Ronald Douglas Montrose left us on 3rd March 2012. He was an American rock guitarist who led the bands Montrose and Gamma and also performed and did session work with a variety of musicians. Ronnie Montrose was often referred to as one of the most influential guitarists in American hard rock. Let's listen to his musical magic from the song Rock the Nation.
और नीना, आज हम याद कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा को, और जिनकी आज जयंती है. भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी ने जो योगदान दिया वो असाधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया था जब उस दिशा में केवल यूरोपीय, विशेष रूप से अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे. और इंग्लैंड की अपनी पहली यात्रा से लौटकर जमशेद जी टाटा ने चिंचपोकली में एक तेल मिल को कताई बुनाई मिल में परिवर्तित करके औद्योगिक जीवन का सूत्रपात किया था. और टाटा साम्राज्य के जनक जमशेद जी द्वारा किए गए अनेक कार्य आज भी लोगों को प्रेरित और विस्मित करते हैं. भविष्य को भांपने की उनमें अद्भुत क्षमता थी और उन्होंने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई और राष्ट्र को महाशक्ति बनने के मार्ग में अग्रसर किया। जमशेद जी के रूप में भारत को एक ऐसा व्यक्ति मिल गया था जिसके पास नई नई कल्पनाएं और विचार थे, और वो कहते हैं ना कि जब सपने होते हैं ना तो हमारे पंख अपने आप उड़ने लगते हैं, और जिन्हें ये वास्तविकता में बदल सकता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में उन्होंने अपनी संपदा, अनुभव और प्रतिष्ठा का उपयोग किया। अपने साथियों का पूरा सहयोग अधिकार भाव से प्राप्त करने का उनमें एक असाधारण गुण था, और अच्छा भोजन अगर उनकी कमजोरी थी तो दूसरी ओर ज्ञान की उनमें अद्भुत प्यास थी।
यस, ही वाज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन बिजनेस एंड टुक द इकोनॉमी ऑफ इंडिया टू अ डिफरेंट लेवल।
बिल्कुल।
टुडे इज बर्थडे ऑफ कैमिला कैबेलो, हू इज अ Cuban American singer, songwriter, and actress. She rose to prominence as a member of the girl group Fifth Harmony, which formed on The X Factor in 2012. Cabello's debut album, Camila, reached number one on the Billboard 200 chart. Cabello has won many awards throughout her career, including 2 Latin Grammy Awards, 5 American Music Awards, Billboard Music Awards, MTV Awards, Grammy Awards, and whatnot. She raises money for charity organizations like Save the Children and Children's Health Fund. Here's Senorita and Havana by Camila. We also celebrate the birthday of Alexander Graham Bell, who was a Scottish-born American inventor, scientist, and engineer who is credited with inventing and patenting the first practical telephone, which was the starting of all communications. Alka,
बिल्कुल नीना, और वो जो ट्रिंग ट्रिंग की आवाज होती थी ना, वो दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। बिल्कुल। और आज हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध संगीतकार रवि शंकर शर्मा, जिन्हें दुनिया रवि के नाम से जानती है।
मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी।
बतौर संगीत निर्देशक उन्होंने 1955 में फिल्म वचन से अपना सफर शुरू किया, लेकिन 1960 में आई गुरुदत्त की क्लासिक फिल्म चौदहवीं का चांद ने उनकी किस्मत भी चमका दी। उम्दा गीत संगीत और अभिनय ने रवि को बतौर संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
रोनन पैट्रिक जॉन।
जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों।
रवि को उन लोगों में माना जाता है जिन्होंने महेंद्र कपूर और आशा भोसले को स्थापित किया, और यदि हिंदी फिल्मों के कुल 500 सुपरहिट गीतों को लिया जाए तो उनमें अकेले रवि के 100 से ज्यादा सुपरहिट गाने हैं, और केवल हिंदी ही नहीं 15 मलयालम फिल्म में भी उन्होंने संगीत दिया।
गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो ना मुंह छुपा।
रॉन पैट्रिक जॉन कीटिंग इज एन आयरिश आर्टिस्ट, सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। Keating is an active in charity work and has been a charity campaigner for Marie Keating Foundation. Here is a song from Notting Hill.
Touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You'll say it best.
और आज जन्मदिन है शंकर महादेवन का।
तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, महकी हुई सी अब सारी हवाएं है, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी अदाएं है।
We have an update from Oscars. Zoe Saldana won the Oscar for Best Supporting Actress for Emilia Perez at the 97th Academy Awards in Los Angeles. while Kieran Culkin took home the award of Best Supporting Actor for A Real Pain.
और नीना घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से अनुमति लें, तो अलका सिंह और नीना आरिकल को अनुमति दीजिए. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी.
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे. नमस्कार.